इशिका और अभिमन्यु केशव के यहाँ डिनर पर गए हुए थे। उनके पीछे से उर्वशी वसुधा के विला में जाकर चुपकी से उनके कमरे में चली गई थी। उर्वशी के पास अच्छा मौका था, जब अभिमन्यु और इशिका के वहाँ ना होने पर वो उनके कमरे की तलाशी ले सकती थी। इस बीच उसे इशिका की रिपोर्ट दिखाई दी, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी कन्फर्म की गई थी। उर्वशी हमेशा से यही चाहती थी कि राजवंश फैमिली को अगला वारिस नक्श दे, लेकिन अब खुशी अभिमन्यु और इशिका की तरफ से आ रही थी। अभिमन्यु के बाप बनने की खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने रिपोर्ट को वहीं क्रश करके फेंक दिया और गुस्से में बाहर आ गई थी। उर्वशी तेज कदमों से चलते हुए अपने विला की तरफ जा रही थी कि जल्दबाजी में वो नक्श से टकरा गई। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। उर्वशी ने नक्श को इग्नोर किया और वहां से जाने को हुई। तभी नक्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आप क्या इतना नाराज हैं? आप मुझसे की बात भी नहीं करेंगी? जो भी हो रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उर्वशी नक्श की तरफ पलटी और सख्त आवाज में बोली, सब तुम्हारी ही गलती है। आयशा जैसी भी थी, तुम्हें उसके साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हारा उसके साथ रिलेशन टूट गया तो कोई दुनिया खत्म नहीं हो गई, या दुनिया की सारी लड़कियां मर नहीं गई हैं जो अब तक तुम सिंगल हो? अच्छा, तो आपके गुस्से की वजह यह है कि मैं अब तक सिंगल हूँ? मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, वरना मैं कर लेता शादी, नक्श ने बेपरवाही से कहा। पसंद तो तब आएगी ना जब तुम अपना ध्यान इशिका से हटाकर किसी और की तरफ देखोगे भी। तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, अभिमन्यु की पोजीशन और भी स्ट्रांग होने वाली है। इशिका उसके बच्चे की माँ बनने वाली है नक्श, अगर ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं अभिमन्यु को ये खुशी कभी नसीब नहीं होने दूंगी, उर्वशी गुस्से में काफी कुछ बोल गई थी। नक्श को जब इशिका की माँ बनने का पता चला तो वो चौंक गया था। उसे झटका सा लगा, उसने उर्वशी की आगे की बातें मानो सुनी ही ना हो। उसकी आंखों में अधूरे प्यार का दर्द उतर आया था। उसका ये बर्ताव देखकर उर्वशी को और गुस्सा आने लगा। उसने नक्श का हाथ पकड़कर झिझोड़ते हुए कहा, मतलब मैं ही पागल हूँ जो तुम सबका फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोचती रहती हूँ? अभी भी तुम्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वो लड़की अभिमन्यु के बच्चे की माँ बनने वाली है? हाँ, फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो किसी और के साथ है। आज आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं, आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं इशिका से प्यार करता था, लेकिन आपने मेरी शादी आयशा से करवा दी। कितना अच्छा होता जो मैं आपकी बात नहीं सुनता और इशिका के स्टेटस को इग्नोर करके उससे शादी कर लेता, तो आज मेरा कितना फायदा होता? वो डॉक्टर मर्चेंट है, ऊपर से सिंघानियास की जायज औलाद भी वही थी। नक्श ने उल्टा अपना गुस्सा उर्वशी पर निकाला और फिर वहां से चला गया। नक्श पर उर्वशी के गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। उर्वशी उसे जाते हुए हैरानी से देख रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, इसे भी मुझ पर गुस्सा करना है? वो पार्थ राजवंश कम था क्या जो इशिका का बच्चा भी आने वाला है? पता नहीं इसे इसकी पोजीशन दिलाने के लिए मुझे किस किस से निपटना होगा। पार्थ का ख्याल आते ही उर्वशी को याद आया कि वो पिछले दो दिनों से घर नहीं आया था। अगर उसे यहाँ से जाना ही था तो क्या दिक्कत थी शेयर्स हमारे नाम करने में? लेकिन नहीं, सबको हमारे लिए मुसीबत खड़ी करनी है। जो भी हो, मुझे इस बात का फायदा उठाना ही होगा कि इशिका और अभिमन्यु ने अब तक इशिका की प्रेगनेंसी को हम सबसे छुपा कर रखा है। ऐसे में मैं कुछ करूंगी भी तो मेरे ऊपर डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम हमें तो प्रेगनेंसी का पता ही नहीं था, उर्वशी ने मन ही मन कहा। उसे कुछ राहत की सांस मिली और वो आगे की प्लानिंग करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं इस बीच इशिका अभिमन्यु और राधिका घर पहुंचे। पूरे रास्ते उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। घर आते ही राधिका तेज कदमों से चलकर अंदर जाने लगी। इशिका ने गाड़ी से उतरते ही अभिमन्यु से कहा, मैं माँ से बात करके आती हूँ, डैड के बिहेवियर की वजह से वो हर्ट हुई होगी। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी। इशिका थोड़ा दौड़ते हुए राधिका के पीछे जाने लगी। वो उसके पास पहुंची ही थी कि राधिका ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, मुझे कुछ देर अकेले रहना है इशिका, और तुम भी आराम कर लो। हमेशा मेरे आगे पीछे मत घूमती रहा करो, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, अभिमन्यु को टाइम दो। लेकिन माँ, इशिका ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन राधिका ने उसे चुप करते हुए कहा, प्लीज इशिका, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मुझे श्रुति से भी बात करनी होगी, उसने मुझसे पूछे बिना ये सही नहीं किया। राधिका को समझने में देर नहीं लगी कि केशव को इस बारे में किसने बताया होगा। इशिका को वहीं पर छोड़कर राधिका अपने कमरे में चली गई, तो वहीं अभिमन्यु उसके पास पहुंच चुका था। अभिमन्यु को उनकी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन जिस तरह से इशिका को वहीं पर छोड़कर राधिका अंदर गई थी, उससे साफ था कि इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती होगी। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, उन्होंने बात करने से मना कर दिया होगा। हाँ, क्योंकि उन्हें टाइम चाहिए। क्या आज रात मैं उनके साथ सो सकती हूँ? इशिका ने पूछा। वो राधिका के मना करने के बावजूद उसे ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। अभिमन्यु ने नामे सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं, अगर उन्हें थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना है तो तुम्हें उन्हें टाइम देना चाहिए, और खुद को भी थोड़ा रिलैक्स करो। मिस्टर सिंघानिया के लिए ये सब कुछ नया है, तो तुम उनकी हेल्प करो। रही बात मिसेस सिंघानिया की, तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी। तो क्या तुम उनसे बात करने के लिए जाओगे? इशिका ने हैरानी से पूछा। अभिमन्यु ऐसा शख्स नहीं था जो किसी के परेशान होने पर उसे टाइम देकर समझाने की कोशिश करे, ना ही उसने पहले ऐसा कुछ किया था। उसके लिए वसुधा मायने रखती थी, या फिर उसके बाद इशिका। क्यों, मैं उनसे बात करने के लिए नहीं जा सकता क्या?
अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर पूछा। ऐसा नहीं है, तुम जा सकते हो, आखिर तुम दोनों के बीच में एक रिश्ता है, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, हमारे बीच एक रिश्ता है, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी मॉम मेरी मॉम की तरह है, क्योंकि मैं अपनी मॉम से नफरत करता हूँ। मुझे मिसेस सिंघानिया हमेशा से पसंद है, वो काफी सुलझी हुई इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह, तो मुझे उनसे बात करके अच्छा लगेगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अच्छा जी, वो तुम्हारी तरह सुलझी हुई इंसान है, तो फिर मैं क्या हूँ, इशिका ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर पूछा। तुम वो हो जो आजकल कुछ ज्यादा ही उलझ गई हो, पर चिंता मत करो, मुझे तुम्हें सुलझाना अच्छे से आता है, अभिमन्यु मुस्कुराकर कहा, और फिर उसने अगले ही पल इशिका को अपने करीब खींच लिया था। उन दोनों के नाक आपस में टच हो रहे थे। अभिमन्यु ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी लाइफ के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम है, बदले में तुम्हें मुझे टाइम देना होगा, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बिल्कुल, मैं तुम्हें अच्छे से टाइम दे रही हूँ, एक हफ्ता हो जाने के बाद मुझे काम पर भी लौटना पड़ेगा, मैंने पार्थ को भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी रिसर्च पर काम करूंगी, इशिका ने जवाब दिया। राजवंश फैमिली में पार्थ नया ही आया था, इस वजह से किसी को खबर नहीं थी कि वो कहाँ है, लेकिन इशिका के मुंह से जिक्र सुनकर अभिमन्यु को भी ख्याल आया कि उसने काफी टाइम से पार्थ को देखा नहीं है, आखिरी बार वो उससे रेस्टोरेंट में ही मिले थे। अभिमन्यु ने इशिका से कुछ नहीं कहा, वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अभिमन्यु ने इशिका के होठों पर हल्का सा किस किया और कहा, चलो अब तुम जाकर चेंज करके थोड़ा रेस्ट करो, मैं मिसेस सिंघानिया से मिलकर आता हूँ। इशिका ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से अंदर चली गई। उसके वहां से जाते ही अभिमन्यु ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत पार्थ को कॉल किया। इस वक्त उसके चेहरे के भाव सख्त थे।
दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही अभिमन्यु ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ हो तुम इस वक्त? अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद आ रही है, पार्थ ने बेफिक्र होकर पूछा। अभिमन्यु के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई थी। उसने उसी अंदाज में आगे कहा, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। उस रात रेस्टोरेंट में तुम हमसे मिले थे, वहीं पर आयशा भी मौजूद थी, और उसी रात उसका कत्ल हो गया था। कहीं इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं? उसके बाद से तुम घर नहीं आए हो। हाँ, क्योंकि वो क्या है ना कि मैं तुम्हारी तरह किसी कंपनी का सीईओ नहीं हूँ, जो काम पर जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सर्जन हूँ और मेरा इमरजेंसी में अवेलेबल होना जरूरी है। चाहे तो वीडियो कॉल करके देख सकते हो, अभी भी एक सर्जरी निपटा कर ही आया हूँ, पार्थ ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। वो इस वक्त हॉस्पिटल के चेंजिंग रूम में खड़ा हाथ धो रहा था। उसका मोबाइल भी उसकी असिस्टेंट उसके कान के पास लगाकर खड़ी थी। अभिमन्यु आगे कुछ नहीं बोला और उसने कॉल काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ पार्थ ने इशारे से मोबाइल दूर करने को कहा। इस वक्त उसके चेहरे के भाव सर्द थे। वो उस रात के बारे में सोच रहा था जब उसने आयशा को आखिरी बार समझाने की कोशिश की थी। गाड़ी में पार्थ और आयशा साथ में थे। पार्थ के इतना समझाने के बाद भी आयशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और वो इशिका को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आयशा ने पार्थ से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम इतना अच्छा होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, जबकि उन लोगों ने तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया था। तुम अपने साथ हुए बुरे बिहेवियर को भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं। कोशिश करके देख लो पार्थ राजवंश, इशिका को तुम मुझसे नहीं बचा पाओगे। तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, वो मेरा शिकार है और उसे चोट पहुंचाने का हक भी सिर्फ मेरा है। मैं कोशिश करने वालों में से नहीं हूं, डायरेक्ट रिजल्ट निकालता हूं और ये तुम्हें अगले 5 मिनट में पता चल जाएगा, पार्थ ने उसे घूरते हुए कहा। आयशा पार्थ की बातों को धमकियां समझ रही थी। उसकी बात खत्म होते ही आयशा जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हें डॉक्टर नहीं स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए, तुम बहुत अच्छे डायलॉग बोलते हो। आयशा सब कुछ मजाक समझ रही थी, इसलिए पार्थ ने अपने पॉकेट से एक स्केल्पल निकाला, जो कि अक्सर सर्जन सर्जरी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो तुम अब मुझे इससे डराने की कोशिश कर रहे हो? वाह, हथियार भी अपने प्रोफेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया है। ये तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर नहीं है डॉक्टर, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, आयशा ने हंसते हुए कहा। वो आयशा की आखिरी हंसी थी। फिर उसे गाड़ी में से आयशा के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पार्थ एक सर्जन था तो अच्छे से जानता था कि कौन सी नस को कहाँ से काटने पर क्या असर होता है। उसने आयशा के शरीर की हर एक नस पर इस तरह से वार किया कि कुछ ही देर में वो लहूलुहान होकर अपना दम तोड़ चुकी थी। उसकी बॉडी पर जगह जगह पर कट के निशान लगे हुए थे। उसे मारने के बाद पार्थ ने किसी और के जरिए आयशा की डेड बॉडी को वहां फेंकवा दिया था। वो लम्हा याद आने पर भी पार्थ के चेहरे पर शिकन की एक लकीर भी नहीं थी। उसने आयशा को बहुत बेरहमी से मारा था। अगली बारी तुम्हारी इशिका राजवंश, मारूंगा नहीं लेकिन सब कुछ छीन लूंगा, पार्थ बेहद सर्दअंदाज में कहा और फिर वहां से बाहर आने लगा। आज ये भी पता चल गया आयशा कैसे मरी। वैसे देखा जाए तो अच्छा हुआ, वरना खामखा इशिका को परेशान करने की कोशिश करती। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।